الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں اور پردہ نشین مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں میں بھی مرد اور عورت میں تقسیم کیا اور دنیوی اعتبار سے ان کے اندر میں کچھ فرق رکھا. عورتیں عموماً عام طور پر جسمانی اعتبار سے مردوں سے کم ہوتی ہے اور مرد لوگ جو ہے وہ عموماً عورتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھا کہ وہ بچے جنتی ہے اور مردوں کے لیے چہروں پر داڑھیاں ہوتی ہے عورتوں کے چہرے پر نہیں ہوتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرق رکھا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں عورتوں کو کمزور پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ظاہری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر تقویٰ اور روحانیت میں ترقی کے لیے کچھ سہولت بھی کر دی تاکہ وہ مردوں سے پیچھے نہ رہیں. مثال کے طور پر شریعت نے مردوں کے لیے نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری قرار دیا کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں پڑھے تو 25 گنا اس کو جماعت کے ساتھ نماز کا ملتا ہے. لیکن اگر یہی عورت جو ہے اپنے گھر میں اکیلی پڑھ لے تو اس کو گھر میں ہی 25 گنے کا ثواب مل جاتا ہے. روحانی ترقی اعتبار سے دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی. نبوت کے علاوہ, نبی بننے کے علاوہ روحانیت کے جتنے بھی مرتبے ہیں, جتنے بھی مقام ہیں, اس میں مرد اور عورت سیم ہیں روحانی اعتبار سے. یہاں تک کہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق کا ہے, صدیقیت جس کو کہتے ہیں. مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اس درجے پر پہنچ سکتی ہیں جیسے حضرت مریم علیہ الصلات والسلام اس درجے پر پہنچی. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اُمُّهُ عیسیٰ صِدِّيقَةً, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی. تو جہاں مرد صدیق بن سکتے ہیں وہاں پر عورت بھی. یہاں تک کہ ہماری ماں عائشہ, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, پوری امت کا اتفاق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدثتنی الصدیقہ بنت صدیق حبیب حبیب اللہ المبرا. یہ مسروق رحمت اللہ علیہ جب سبق پڑھنے جاتے ہیں جو تابعی تھے, کس کے پاس؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو वो बयान करते हैं कि हद्दसतनी सिद्दीका बिनत सिद्दीक, अल्लाह के महबूब की पाकबाज महबूबा अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे ये हदीस बयान की। मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में औरतें भी सिद्दीका बन सकती है। तो नबूवत के अलावा, नबी बनने के अलावा, औरतें नबी नहीं बन सकती, नबूवत के अलावा जितने भी रूहानियत के दर्जे हैं उसमें औरतें भी मर्द के बराबर आगे बढ़ सकती है। और आखिरी मकाम सिद्दीका है, उसके बाद तो नबूवत है। तो सिद्दीक और सिद्दीका होने तक तो औरतें भी तरक्की कर सकती है। इसीलिए मन जद वजद, जो जितनी कोशिश करेगी इतना आगे बढ़ेगी, जो जितनी पाकबाज बनेगी इतनी वो अल्लाह के यहां तरक्की करेगी। इसीलिए कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, मन अमिल सालिहम मिन ذكرين او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا, जो कोई नेक काम करे चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह क्या कह रहे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन ईमान शर्त है, वह हुआ मुमिन, वो मर्द हो या औरत ईमान के साथ जितने भी नेकी के काम करेंगे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाते हम उनको बहुत ही खुशियों वाली जिंदगी देंगे और अल्लाह ताला उनके अच्छे अच्छे कामों का बेहतर से बेहतर बदला देगा। मालूम होता है कि ईमान और आमाल सालेहा की वजह से मर्द की तरह औरत भी बहुत बड़े दर्जे पर पहुंच सकती है। कोई जरूरी नहीं कि मर्द ही हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला इतनी बड़ी आलिमा थी, इतनी बड़ी आलिमा थी कि सारे सहाबा का इलम एक तरफ और हजरत आयशा का इलम एक तरफ, बहुत बड़ी। दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें गुजरी है जिन्होंने अपने अमल से दिखलाया, अमल किया, दीनदारी, तक्वा, उनका इल्म, उनकी परहेजगारी, उनका जहर और इबादत में मर्दों के शाना बशाना बराबर उनका मुकाबला कर सकती है। लेकिन जो औरतें आखिरत की फिक्र से गाफिल है, जो औरतें आखिरत से गाफिल है, वो दुनिया के कामों में तो मर्दों के शाना बशाना है, कमाने में, दुनिया के कामों में तो मर्दों के शाना बशाना शोल्डर टू शोल्डर चलकर इस बात को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम भी मर्द के बराबर हैं, लेकिन उनमें इल्म नहीं, तकवा नहीं, परहेजगारी नहीं, तो कयामत के दिन रूहानियत के मैदान में वो मर्द के बराबर नहीं है। पिछले जमाने में औरतें बहुत समझदार थी, उन्होंने कह सकते हैं बड़ी मेहनतें की दीनदारी में, तकवा में, अजवाज मुतहरात में देख लो, सहाबियात में देख लो, ये तो थे ही, उनके बाद भी देखो बड़ी बड़ी औरतें मुहद्दिसा थी, फकीहा थी, हाफिजा थी, आलिमा थी, ये कुछ भी नहीं तो तकवा वाली थी कि एक हाथ उठाए उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मां जो है वो बहुत नेक थी, बहुत नेक। उन्होंने अकेले अपने यतीम बेटे की तरबियत की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, देखो कैसी तरबियत की कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े इमाम बने, पूरी दुनिया को अपने इल्म से फैजियाब किया, पूरी दुनिया। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के एहसान मन है। तो एक औरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे, अपने बच्चे के पीछे, यतीम के पीछे इतनी मेहनत कर सकती है कि वो अपने बेटे को इमाम बना सकती है। मालूम हुआ कि उनकी मां कितनी पाक होगी, कितनी तकवा वाली होगी कि जिनका तकवे का असर उनकी औलाद में आए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, امام بخاری بھی امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی طرح یتیم تھے، چونکہ جب پیدا ہوئے تو باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ آج کون نہیں جانتے امام بخاری کو، امیر المؤمنین ہے فی الحدیث، ساری دنیا میں ان کا تقویٰ مشہور ہے. فرمایا میں نے پوری زندگی جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت بیک بائٹ زنا سے بدتر ہے، فرمایا میں نے پوری زندگی غیبت نہیں کی. تو اور گناہ تو چھوڑو، اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ ہو ہی جاتی، لیکن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نہیں. کتنا متقی آدمی ہوگا، کیا دنیا میں عالم نہیں بن سکتا جب تک بخاری شریف نہ پڑھے، دنیا میں عالمہ نہیں بن سکتی جب تک بخاری شریف. ان کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ ماں کا، چونکہ وہ تو بلائنڈ تھے نا. امام بخاری بلائنڈ پیدا ہوئے، ان کی ماں روتی تھی کہ میرا شوہر انتقال کر گیا اور اتنے پیسے چھوڑ کر گیا اور وصیت کر گیا کہ بیٹے کو علم سکھانا ہے جو پیدا ہو. وہ تو بلائنڈ ہے، نابینا ہے، اب یہ کیسے علم سیکھے گا، پیسے کو کیا کروں گی میں. ان کے والد نے کہا، ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے، امام مالک کے شاگرد تھے، فرمایا اس پیسے میں ایک پینی بھی شک ڈاؤٹ کی نہیں ہے، حرام تو چھوڑو ڈاؤٹ فل بھی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے علم کے لیے ہے. رکھ کر چلا گیا، لیکن بچہ ہوا تو نابینا ہوا. ماں روتی رہی روتی رہی کئی مہینوں تک، پھر خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ تہجد پڑھ کر سو گئی، فکر نہ کر، اللہ تیرے بچے کو آنکھیں دے دیتا، صبح اٹھے گی تجھے نظر آ جائے گا. صبح اٹھی تو امام بخاری بچے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی. یہ ماں کی دعا تو تھی نا، تو ماں کے بیٹے کے پیچھے ماں کا ہاتھ تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں کتنی متقی ہوگی، کتنی پرہیزگار ہوگی. اب جب ہم ماں باپ بچوں کی تربیت ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. کل ایک ماں آئی تھی میرے پاس، اتنی رو رہی تھی، بیٹی نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھ بھی سج گئی تھی. امام غزالی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں بہت عجیب بات، فرمایا ماں باپ کو بد دعا دینا ضروری نہیں ہے، بچوں کے ہلاک ہونے کے لیے ماں باپ کو بد دعا دینے کا ضرورت نہیں ہے. وہ ماں باپ اپنے روم میں میاں بیوی بیٹھ کر اپنے نکمے اور نافرمان بچے کے بارے میں بات کرتے کرتے اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائے تو یہ بیٹے اور بیٹی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. امام غزالی کہہ رہے بیٹے اور بیٹی کی ہلاکت کے لیے. لیکن یہ درجہ کب ہوتا ہے؟ جب بچپن میں ماں نے برابر تربیت نہ کی ہو، ماں پاک باز نہ ہو، تقوی والی نہ ہو، نمازی نہ ہو اور دعائیں نہ کرتی ہو. ایسا ہو سکتا ہے میں اپنی ماں کو 10 مرتبہ پکاروں تو یقیناً پہلی بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، 40 بار نہیں، 50 بار میں پکارتا رہوں تو بچے کو تو ماں ضرور کہے گی جی مائی سر، او میرے بیٹے کیا چاہیے. یہاں اللہ کو ہم بار بار پکارے اللہ جواب نہیں دے گا، ایسا ہو سکتا. تو وہ ماں اپنے اللہ کے سامنے روئے اور نمازیں پڑھے پابندی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے، پھر دعائیں کرے اپنے بیٹوں کے لیے، یقیناً وہ پھر بد دعا دینے کا وقت نہیں آئے گا. وہی بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے. پچھلے زمانے میں ایسی عورتیں تھیں جو مردوں کے دینداری میں وہ عورتیں مقابلہ کرتی تھیں، علم کے اندر میں بھی. یہ چیز کتابوں میں لکھی ہے، ہر دور میں دیندار عورتیں رہی، ہر دور میں. ایسا نہیں کہ صحابیہ ہی تھی، ایسا نہیں کہ وہ تابعیہ تھی، تبعیہ نہیں، سب ہر دور میں رہی ہے. اندازہ کیجیے، مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ ابھی گزرے، ان کی نانی کا مقام دیکھیے، پھر ان کی والدہ کا مقام دیکھیے. قریب کے زمانے کے مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی نانی، مولانا یحییٰ کون ہے؟ مولانا زکریا صاحب کے والد صاحب، مولانا یحییٰ صاحب ہے، وہ بھی بڑے محدث تھے، مولانا زکریا بھی محدث تھے. مولانا الیاس صاحب دیکھو نانی کی حالت کیا، ان کا نام تھا امت الرحمان اور وہ مشہور تھی امی بی، ان کو لوگ کیا کہتے تھے، امی بی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی نانی کو. یہ मौलाना अशरफ अली साहब थानवी और मौलाना खलील रहमान साहब सहरानपुरी, खलील अहमद साहब सहरानपुरी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिस उस बूढ़ी की खिदमत में जाते थे दुआ के लिए, उस बूढ़ी के पास जाते थे दुआ के लिए। वो कितनी मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांधेलवी उनकी बेटी थी। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधेलवी भी बड़े 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 मुहद्दिस थे और बड़े अल्लाह के वली थे, उनकी बेटी थी अमतुर रहमान। और मौलाना मुजफ्फर हुसैन शाह मोहम्मद इसहाक साहब दहलवी ये इस औरत के शागिर्द थे। उनके तकवे का ये आलम था कि उनकी तालिब इल्म के जमाने में उनका एक मसले में एहतियात देकर शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह हैरत में रह गए। कारी तैयब साहब कहते हैं मैंने मिश्कात पढ़ी मेरी दादी से। कारी तैयब साहब जो 50 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रहे कह रहे मैं आलिम बना यानी मिश्कात शरीफ पढ़ी मैंने मेरी दादी मौलाना कासिम नानोटवी की घरवाली से। ये उम्मी भी कहती है जब मेरी उम्र 7 साल की थी, 7 साल की ये औरत जो बच्ची है अभी बाद में अल्लाह वाली बनी है, 7 साल की थी उस वक्त मेरे अब्बा मौलाना मुजफ्फर हुसैन, कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह मौलाना मुजफ्फर हुसैन कौन थे, कितने बड़े अल्लाह के वली थे। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब का कांधेलवी मुझे बैर फरमाकर मेरे कुछ मामूलात बना दिए, बेटी इतनी बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, इतनी बार अल्लाह अल्लाह पढ़ना है। बाप भी बड़े अल्लाह वाले थे तो बैठ कर लिया अपनी बेटी को, कहा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। मेरी मामूलात मेरे वालिद साहब ने और एहतमाम करती रही है, छोटी उम्र में 7 साल की उम्र में बच्ची मामूलात की पाबंदी कर रही है। अब तो बहुत सारे लोग मुझसे बैठ होते हैं मुझे पता भी नहीं कौन है, आते ही नहीं, पाबंदी तो दूर की बात है लेकिन शेख को देखने भी नहीं आते, पूछते भी नहीं कि भाई क्या मैं ये गुना हो रहा है ये फुना हो रहा है मैं क्या करूं, मैं कौन से मामूलात पूरा करूं, कौन नहीं करता है कौन पूरा करता है, कोई किसी को पता ही नहीं। अब तो एक जमाना भी ऐसा आ गया कि शोहर बीवी से डरता है और पीर साहब भी मुरीद से डरता है और माँ बाप औलाद से डरते हैं, ये तीन चीजें हो गई ना, माँ बाप औलाद से डरते हैं, कुछ बोल देंगे तो कुछ कह देगा अभी घर से भाग जाएगा मार देगा, तो माँ बाप औलाद से डरती है और बेचारा शोहर साहब बीवी से डरता है कभी कुछ कहूंगा तो घर से निकाल देगी कहां जाऊंगा मैं, हजारों वाकियात है। और पीर साहब भी डरता है कि कुछ कहूंगा तो फिर मजलिस छोड़ के भाग जाएगा आएगा नहीं, ऐसी की तैसी और बड़े बहुत सारे पीर साहब है, ये जमाना आ गया ऐसा है। इसलिए उम्मी भी के तकवा और इबादत में जैसे जैसे फरमाया फजर के बाद से इशराक तक मैं अगरचे 7 साल की थी, जैसे जैसे मेरी उम्र होती थी इशराक तक बैठती थी और अल्लाह का जिक्र करती थी बचपन से, और इशराक की नमाज इतनी लंबी पढ़ती थी वो चाश्त का वक्त यानी 2 घंटे पढ़ती थी। ये उम्मीद भी है और चाश्त की नमाज शुरू करती तो जवाल तक, बहुत नेक थी, सुन्नत और नवाफिल की पाबंद। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बड़े ऊंचे दर्जे के आदमी, आपने बार बार नाम सुना है, बहुत बड़े, उनकी नमाज तो बहुत मशहूर थी, जिंदगी में कभी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी कभी नहीं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपनी नानी को देखा और उनकी नमाज को देखा तो मौलाना इलियास के बड़े भाई कौन थे, मौलाना जकरिया साहब के वालिद मौलाना यहिया साहब थे, तो मौलाना मोहम्मद यहिया साहब के पास चले गए पढ़ने की गरज से मैं गंगो चला जाऊं। 10 साल तक हजरत गंगो ही को भी देखा, कह रहे हैं मौलाना साहब कहते हैं मैंने 10 साल तक हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगो ही को भी देखा और उनकी नमाज को भी देखा कि वो कैसी नमाज पढ़ते हैं। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आगे जाकर बहुत बड़े अल्लाह के वली बनते हैं। हमारी नानी उम्मी बी की नमाज की झलक मैंने मौलाना रशीद अहमद गंगोई में देखी है, जैसे वो नमाज पढ़ते थे वैसे मेरी नानी भी नमाज पढ़ती थी, बहुत लंबी लंबी नमाज। तो बहुत ही नेक ऐसे लोग थे। उम्मी भी कह रहे एक दौर ऐसा गुजरा कि उनको अपने खानदान को देखा कि लोग दीन से दूर हो रहे हैं, उनको ये ख्याल सताता रहा दिन ब दिन मेरा खानदान दीनदारी में कम होता जा रहा है, कहीं खानदानी बुजुर्गों के इल्म अमल की मिरास आहिस्ता आहिस्ता खत्म ना हो जाए, सारे उलमा बन रहे हैं सारे मुहद्दिस, आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगा। अगर दीनदारी खत्म हो जाएगी तो जाहिर ही बात है। तो जनजाने एक जगह है यूपी में, वहां एक आलिम मौलाना इस्माइल साहब तशरीफ लाए वहां, और निकाह पढ़ाने की गर्ज से आए थे। मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब बयान किया, मौलाना जब बयान कर रहे थे तो उम्मी भी अपने वो कितनी नेक होगी कि अपने दिल की आंखों से पहचान लिया कि ये बहुत बड़ा मुत्तकी आलिम है। वो बयान कर रहे हैं और दिल की आंखों से औरत ने पहचान लिया कि मौलाना इस्माइल साहब जो आए हुए हैं बहुत बड़े मुत्तकी आदमी हैं। तो उम्मी बी ने कहा मैं बड़ी बेटी की शादी इनके साथ करूंगी, इतने नेक बड़े आलिम के साथ। उस जमाने में ऐसा होता रहा तो अपनी बेटी की शादी मौलाना इस्माइल के साथ की, और एक अजनबी शख्स थे लेकिन उनकी उम्र थोड़ा उम्मी बी की बच्ची से ज्यादा थी, लेकिन बहुत नेक आलिम थे। इसलिए खानदान के लोगों ने सोचा कि छोटी लड़की और बड़ा आलिम है, लेकिन उम्मी बी को अल्लाह ताला ने दीनी फिक्र की बसीरत भी अता की थी, नेक थी। और ये बेटी जिनका नाम सफिया था, जो कौन है पता है, मौलाना इस्माइल साहब और ये लड़की शादी हो गई, उम्मी बी की बेटी और मौलाना इस्माइल साहब जो बयान के लिए आए थे, उम्मी बी ने अपने दिल की आंखों से पहचान लिया कि बहुत बड़े आलिम है, मुत्तकी आदमी है। अगरचे उम्र में बड़े हैं थोड़े 6-7-8-10 साल तक, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुत्तकी आलिम है, मेरी बेटी भी आलिम है, सफिया है, नेक है, इनकी शादी कर दी। उम्र को नहीं देखा, शादी कर दी। उनकी शादी होने के बाद दो बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, कौन, मौलाना यहिया साहब जो मौलाना जकरिया साहब के वालिद हैं, और मौलाना यासर रहमतुल्लाह। फिक्र थी ना उनके अंदर में कि अब खानदान से दीनदारी खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह पाक ने ऐसे दो पैदा किए कि मुहद्दिस देखो मौलाना जकरिया साहब, और इधर उनके वालिद मौलाना यहिया साहब, इधर मौलाना यहिया साहब का काम कैसा चला, सारी दुनिया में लोग तबलीग दीन तबलीग का काम कर रहे हैं। ये उस नानी की बरकत थी, उस नानी का तकवा था। तो मौलाना इलियास साहब और बीबी सफिया के यहां सबसे पहले मौलाना यहिया साहब पैदा हुए जो मौलाना जकरिया साहब के वालिद साहब थे। मौलानों को अभी मौलाना बच्चे पैदा हुए, मौलाना यहिया साहब बच्चे, अब दूध पिलाना है, बीबी सफिया दूध पिला रही है, उस दूध पिलाने की हालत में मां को हाफिज बनने का, हाफिजा बनने का शौक पैदा हुआ। एक तरफ बच्चे को दूध पिला रहे और आप अंदाजा कीजिए 2 साल दूध पिलाती रही, उस 2 साल में मां हाफिजा बन गई। मौलाना इलियास की मां की बात कर रहा हूं मैं रहमतुल्लाह ने, और मौलाना यहिया साहब इतना कुरान क्या था कि कुरान करीम में 7 मंजिल है, कितनी मंजिल है, 7 मंजिल, पहली मंजिल 7 पारे पर, इस तरह हर मंजिल 7-8-6-7-8-6 पारे पर, 7 मंजिल पर पूरा कुरान खत्म हो जाता है। रोजाना काम करती करती 1 मंजिल पूरा कर लेती थी, कुरान खोलकर नहीं, मुंह पे। मेरी माए और बहने, ये मेरा बोलना आसान है, आपका सुनना आसान है, जब आप करोगी ना तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। और मंजिल के अलावा रोजाना 5,000 मरतबा दुरूद शरीफ, कितने 5,000, और 5000 मरतबा अल्लाह 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 और 1900 टाइम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? मौलाना इल्यास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की, मौलाना यहिया साहब जो बड़े भाई है उनकी वालिदा की बात कर रहा हूं। नानी तो थी उनकी जगह, बेटी भी ऐसे। और 500 मरतबा हस्बी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और 1100 चूंकि काम करती जाती पढ़ती जाती थी, हम काम करते जाते फोन करते जाते, 1100 मरतबा या मुगनी और 200 मरतबा या हय्युन या कय्यूम और 200 मरतबा सुबहान अल्लाह, 200 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 200 मरतबा अल्लाहु अकबर और 500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सब रोजाने का मामूल था, ये सब लिखा हुआ है। मैंने लिया सब रहमतुल्लाह की तमें सब लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मां जब नेक बनती है ना तो औलाद ऐसी पैदा होती है। माई जब सुबह से निकल जाती है मार्केट में, शाम को आती है घूम फिर कर बच्चे स्कूल गए हुए, तो बच्चों पर क्या हालत होगी। खुद ही जिक्र करना चाहिए, खुद ही अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, खुद ही इबादत करनी चाहिए। ये अच्छी मां अच्छी बेटी अच्छी बहन अच्छी बीवी बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदगी में आखिरत की फिक्र आएगी, दुनिया से बेरगबती आएगी, दिल में यकीन होगा कि दुनिया के ऐश और इशरत से कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी चीजें हम देखते हैं कि अल्लाह वाले जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो अल्लाह की तरफ से इतनी मदद आती है कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी सात नस्लों तक उलमा सुलहा और अल्लाह तबारक व ताला औलिया किराम पैदा फरमाते हैं। और मुझे और आपको तो अल्लाह पाक ने कौन सा महीना दिया, अभी देखो याद करो, रबीउल अव्वल का महीना बहुत कम जल्द आ रहा है, मुहर्रम और सफर के बाद याद दिलाता है कि भाई रबीउल अव्वल के महीने में ये सारी चीजें लेकर कौन आए थे? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे दुनिया, जिन पर दुनिया के दरख्त और पत्तों और जर्रों और मखलूकात और सितारों से हजारों मिलियनों बिलियनों ट्रिलियनों से ज्यादा दुरूद पाक और सलात और सलाम के नजराने हो उनकी जात पर हम सब की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और दुरूद न पढ़े, मेरे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन ये जन्नत का रास्ता भूल जाएगा। दो ही रास्ते होंगे ना, जन्नत का होगा या तो जहन्नम का होगा, जन्नत का भूल गया तो कहां जाएगा? जहन्नम की तरफ जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए फरमाया दुनिया में सबसे बड़ा बखील वो है जब मेरा नाम आए और दुरूद न पड़े। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। उस नबी को इस उम्मत की यही फिक्र थी, उनकी दुनिया की फिक्र नहीं उनकी आखिरत की फिक्र थी, बहुत फिक्र कि मरते दम तक। ये भी सही रिवायत नॉर्मली हमारे यहां मशहूर है, 12 वफात यानी 12 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, लेकिन ये तारीख सही नहीं है। ये तो बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ तिर्मिज़ी शरीफ हदीस की किताब में सही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरफा का दिन आखिरी हज का जुमा का दिन था जब आप हज में गए थे, आखिरी हज जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, जुमा का दिन था।
और यह भी सही रिवायत है कि आपकी वफात मंदे को हुई, पीर के दिन हुई, सही रिवायत। अब उस जुमा से लेकर मंदे तक देखो, उस जुमा से लेकर रबीउल अव्वल की मंदे तक देखो, कहीं भी 12 तारीख नहीं आती है, चाहे वो तीनों महीना जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, चूंकि रबीउल अव्वल में आपकी वफात हुई ना, तो मुहर्रम, जिलहिज्जा और मुहर्रम और सफर, तीनों महीने को चाहे 30 गिन लो, चाहे 29 गिन लो, चाहे 1 को 29 गिनो, 2 को 30 गिनो, या 2 को 29 गिनो 29 और 1 को, अब सारा हिसाब लगा लो, कहीं भी 12 रबीउल अव्वल नहीं आती है, आती है 2 या 3 तारीख, 2 रबीउल अव्वल या 3 रबीउल अव्वल, क्या हुई, आपकी वफात हुई है। मेरी बात समझ आ रही है? और पैदाइश की 8 रबीउल अव्वल आती है, अब पैदा भी हुई इसी महीने और वफात भी हुई इसी महीने, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की जिल्द सानी में है, बचपन ही से यहूद और नसारा और मुशरिकीन में जाहिर कर दिया कि आप बहुत नेक और मुत्तकी हैं और आगे चलकर बहुत नेक मुत्तकी बनने वाले हैं। अबू तालिब कहते हैं हम शाम का सफर कर रहे थे, जिल्द सानी बुखारी शरीफ में है, शाम का सफर कर रहे थे, बहुत गर्मी थी, तो ये काफला जो होता था पूरा मक्का से जा रहा था सीरिया बिजनेस करने के लिए, तो अबू तालिब ने सोचा कि इस वक्त मैं अपने नेफियों को साथ ले लूं, भाई का बेटा अब्दुल्ला का तो इंतकाल हो गया, तो अपना सॉरी भतीजे को मैं क्या करूं साथ में ले लूं, तो अब्दुल्ला के बेटे को साथ में, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला के फर्स्ट कजन होते हैं, ले लिया, छोटे थे। अब ये काफला जा रहा है, गर्मी थी, एक दरख्त के नीचे यहूद लोग बैठे, ये लोग बैठे हुए थे, कौन, क्रिश्चियन पोप एंड पादरीज, वो उनके मौलवी होते हैं, रिब्बी जो है यहूद के मौलवी होते हैं, और हमारे यहां तो नाम इतना है, मौलवी साहब, अल्लामा साहब, फहामा साहब, फखामा साहब, फखरुल इस्लाम, इतने नाम है, 10 गज के तो नाम होते हैं, 10 गज के लंबे नाम है उनके, उनके यहां ये है, वो पादरी है और वो रिब्बी है, ये बैठे हुए थे दरख्त के साये के नीचे गर्मी में, देखा काफला आ रहा है, वो जैसे जैसे काफला दरख्त के करीब आ रहा है, ये दरख्त का शेदो जो है उस काफले की तरफ जा रहा है, वो शेदो क्या है, काफले की तरफ, और गर्मी बहुत थी, जिंदसानी में इसको नकल किया, मैं कोई बीबीसी न्यूज बयान नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह के नबी की बात बुखारी शरीफ से नकल कर रहा हूं, मैं ऐसे शायद उधर चला गया काफले पर, अब सारे लोग जो मक्का के काफले थे वो लोग बैठ गए उस साये में, अल्लाह के नबी को बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो दूसरी तरफ अकेले चले, उधर तो गर्मी है, तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनसे हटकर अल्लाह के नबी पर आ गया, इधर उधर से हटकर किधर आ गया, अल्लाह के नबी पर आ, अभी तो बच्चे हैं, उन पर आ गया, ये देख रहे हैं बराबर से, पोप और पादरी बराबर देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये साया जो है उधर गया, उधर से फिर इधर, एक तो होता है ना देर लगती साये को घूमने की, सुबह में अलग जगह होती, शाम में अलग होती है, ये तो घूम रहा है जैसे फैन घूम रहा है, तो पूछा भाई इस काफले में सरदार कौन है, तो अबू तालिब चचा थे, उनको बुलाया साइड पर, आप चचा है, कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं, कहा मक्का से आए बिजनेस करने के लिए, शाम जा रहे हैं, कुछ वहां से ऊंट बेचेंगे, सामान खरीदेंगे, ग्रोसरीज वगैरह मक्का ले जाएंगे, हमारे यहाँ कुछ उगता उगता नहीं है, कुछ नहीं होता, हम यहीं से लेकर जाते हैं खाने के लिए चीजें, फरमाया ये कौन है, कहा मेरा भतीजा, अच्छा इसकी आंखें हमने देखी, कहने इसको जल्दी जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ बिजनेस करके, कहां चले जाए, मक्का चले जाओ, अरे भाई ठीक तो है, क्यों भगा रहा है हमको, ابو طالب نے کہا کیوں بھگا رہا ہے؟ کہا
اس کی آنکھ دیکھو ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے، ان کی پیشانی دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہے، ان کے انگوٹھے دیکھو، ان کی انگلی دیکھو، ان کی ناک دیکھو، یہ سب ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ یہی بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے۔ کتاب میں دیکھ کے بتا رہے،
اگر ان یہودیوں کو پتا چلے گا اس بچے کو قتل کر دیں گے،
تو وہ نہیں چاہتے،
ان کو لے کر
یہ بچے
کتنا نور ہوگا ان کے اوپر۔ زلیخا کہہ رہی ہے، لبہ ہی زلیخا کیا کہہ رہی ہے، یوسف کو دیکھنے والیا تم نے وہ ایپل کاٹتے کاٹتے ایسا، یوسف جب نکلے نا، جب نکلے نا تو وہ ایسی دیکھتی رہ گئی خوبصورتی کو کہ بجائے ایپل کاٹنے کے اپنی انگلی کھات رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا انگلی کھات رہی ہے، اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی۔
حدیث میں آتا ہے
انا ملیحن، اللہ کے بھی کہتے ہیں انا ملیحن، میں ملی ہوں،
اندر میں چھپا ہوا ہے میری خوبصورتی،
اگر میری خوبصورتی ظاہر ہو جائے
تو میرے سامنے صحابہ دیکھ نہیں سکتے ملی،
اور یوسف کی خوبصورتی صاف ہے اور میری خوبصورتی کے پیچھے ایسا کمال ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ زلیخا کے یوسف کے دیکھنے والیوں نے انگلی کاٹی اور میرے دیکھنے والوں نے انگلی نہیں اپنی گردن بدر احد خندق میں کاٹنے کے لیے تیار ہو۔
حضرت علی فرماتے ایک دن میں گھر سے نکلا، اب وقت نہیں سیرت بیان کرنے کا، لیکن تو میں ایک کچھ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا لے کر ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔
فرمایا میں نے 14ویں رات کا چاند دیکھا اور اللہ کے نبی باہر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر چاند کو دیکھتا ہوں 14 مون کو، ادھر نبی کو دیکھتا ہوں، ادھر چاند کو دیکھتا ہوں، ادھر نبی کو دیکھتا ہوں، آخر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرے نبی کا چہرہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ بھی چمکدار ہے۔
ترمذی شریف سمائے ترمذی میں اس کو لکھا، پھر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔
لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو سبق دیا ہے
وہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے،
مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کی اتنی زیادہ فضائل بیان کیے کہ اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی بن جائیں تو قیامت کے دن اور رمضان کے روزے رکھنے والی بن جائیں اور اگر زکات فرض ہے تو دینے والی بن جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے، جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتے ہیں داخل ہو جا۔
اس لیے
پہلے زمانے کی عورتیں دور کی بات ہے، اس زمانے کی عورتیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ صاحب دونوں بھائی ہیں، دونوں کی والدہ کا بہت تذکرہ کیا، کیسی تھی وہ اور ان کی ماں کیسی تھی اور کس طرح شادی کروائی، وہ کتنی نیک ہوگی کہ اپنے دل کی آنکھوں سے پہچان لیا ایک عالم کو اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی، اور بیٹی بھی کتنی نیک ہوگی کہ دودھ پلاتے پلاتے 2 سال میں حافظہ بن گئی، مولانا الیاس صاحب کی ماں اور مولانا یحییٰ صاحب کی ماں، کہ جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب جیسے ساری دنیا میں دین کو چمکانے والے، اور مولانا یحییٰ صاحب جیسے کہ جن کے پیٹ سے پھر مولانا زکریا صاحب پیدا ہوئے، کہ جن کی کتاب بھی ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال، ایسے نیک لوگ۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں ہر بوت کے دن آپ آتی ہو کچھ نہ کچھ لیسن سبق لے کر جاؤ کہ اپنی زندگی تقوی والی گزارو، اللہ پاک نے تمہیں گھر بیٹھے 25 نماز کا ثواب دینے کا وعدہ کر لیا، مرد مسجد میں آئے گا جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 25 یا 27 تم گھر بیٹھے نماز پڑھ لو، گھر بیٹھے تمہیں 27 نماز کا ثواب مل جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے، گھر بیٹھ کر ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو صحیح بناؤ، صحیح راستے پر، अगर जिंदगी सही होगी तो मैंने आपके सामने वाकया बयान किए किनके, इमाम बुखारी की मां का, बुखारी क्या बने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मां का यतीम थे, इमाम शाफी कैसे बने, वाकया बयान किया मैंने, हजरत जी हजरत मौलाना अली मियां साहब यतीम थे, मां की दुआओं से अली मियां अलीमिया बने, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कादर भी का वाक्य सुन, ये उनके घर वाले उनकी औरतें कैसी नेक थी। चलो सहाबियात तो दूर, ताबीन ताबिया वो तो दूर है, लेकिन इस जमाने के करीब क्या, हर दौर में अल्लाह वाली होती है। और मैंने एक बात आपको बयान की, मेरी माए और बहने, सिर्फ नबूवत औरतें नबी नहीं बन सकती, उसके अलावा औरतें भी मर्द की तरह सिद्दीका बन सकती है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको नेक बनाए, और सीरत के महीने रबीउल अव्वल के महीने को सामने रखकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करें कि यही वो महीना था जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और यही वो महीना था जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाई, यही वो महीना है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रिवायत के मुताबिक आपको नबूवत मिली, यही वो महीना है जिसमें आपने हिजरत फरमाई, यही वो महीना है जिसमें आपका इंतकाल भी हुआ, और यही वो महीना है कि सारी जिंदगी हमें इस महीने को देखकर अल्लाह के नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु عليه وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری آل اولاد کی گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما اے اللہ علم و عمل والی زندگی نصیب فرما طہارت اور پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما कनात वाली जिंदगी नसीब फरमा ए अल्लाह तेरे सामने इलाहुल आलमीन झुकने वालों में से बना दे ए अल्लाह तेरा जिक्र करने वाले जाकिरीन जाकिरात में से बना दे ए अल्लाह साबिरीन साबिरात में से बना दे कानीन कानियात में से बना दे ए अल्लाह शाकिरीन शाकिरात में से बना दे मोमिनीन मोमिनात में से बना दे सादिकीन सादिकात में से बना दे खाशीन खाशियात में से बना दे ए अल्लाह अपनी नेक बंदे बंदियों में से बना ले अपने नेक बंदे बंदियों में से बना ले हमसे राजी हो जा शैतान को हम पर मुसल्लत न फरमा शैतान को हम पर मुसल्लत न फरमा ऐ अल्लाह हमें इलाहुल आलमीन तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई जिंदगी जितनी हो सके हमारी जिंदगी में लाने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह जितने प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ कहीं हो रहे हैं जो कुछ बात सुनी जा रही बतलाई जा रही है हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा अमल की तौफीक नसीब फरमा इखलास नसीब फरमा इखलास नसीब फरमा रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना हमारी औलादों को और औलादों की औलादों में और हमारी नस्लों में हुफाज कुरान कुरान पैदा फरमा आलिम दीन पैदा फरमा मुहद्दिस पैदा फरमा मुफस्सिर पैदा फरमा मुफ्तियान किराम फुकहा पैदा फरमा औलियाए मुत्तकीन मोमिनीन पैदा फरमा मुखलिसीन पैदा फरमा दीन के दाई पैदा फरमा दीन के दाई पैदा फरमा मुबल्लिगीन पैदा फरमा अल्लाह अल्लाह हम सबको कबूल फरमा अल्लाह हमारे वालिदैन भाई बहन रिश्तेदार अकारिब फैमिली सब की मगफिरत फरमा पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा ऐ अल्लाह उम्मत को दोबारा हिदायत के प्लेटफार्म पर खड़ा फरमा ऐ अल्लाह हिदायत के फैसले फरमा रहमत के फैसले फरमा आफियत के फैसले फरमा उम्मत दूर हो चुकी है ऐ अल्लाह दोबारा तेरे नबी की जिंदगी पर खड़ा फरमा इलाहुल आलमीन शैतानों से इलाहुल आलमीन दुश्मनों से इलाहुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमा पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा जिंदों की मगफिरत फरमा मुर्दों की मगफिरत फरमा घर घर में तालीम की तौफीक नसीब फरमा घर घर में फजाइल अमाल की तालीम की हयात सहाबा की तालीम की तौफीक नसीब फरमा घर घर में औरतों को नमाज पढ़ने वालों में से बना दे नमाज पढ़ने वालियों में से बना दे कुरान तिलावत करने वालियों में से बना दे अल्लाह अल्लाह करने वालियों में से बना दे ऐ अल्लाह دین کے اوپر چلنے والیوں میں سے بنا دے. اللہ شراب سے، ڈرگ سے، حرام کاریوں سے، حرام کاموں سے، بے پردگی سے ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جو دعا مانگی اسے بھی قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، دنیا آخرت میں ہمارے لیے اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما، عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے راضی ہو جا، اور قیامت میں راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دینا، تیرے عذاب و تیرے غضب سے ہماری حفاظت کر لینا. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.